ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुखाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई, तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो संभार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग आदीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेवे, कहें कबीर बैकुंठ से हे, फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ में उलट मिले सुखदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने राजा अम्बरीश श्रोताओं ने राजा अम्बरीश के विषय में सुना कि श्री नानक साहेब जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे सतयुग में, और वो ऐसे साधक थे, ऐसी पुण्यात्मा थी, विष्णु जी के उपासक थे कि दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष सन्यासी, कर्म सन्यासी, उस कर्म योगी गृहस्थी अम्बरीश के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद वही राजा अम्बरीश वाली आत्मा त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने, जो सीता जी के पिताजी कहलाए। उस समय वो पुण्यात्मा पूर्व संस्कारों से भक्ति की रुचि में बहुत ज्यादा थे। त्रेता युग में राजा जनक पूर्व संस्कारों के कारण परमात्मा की भक्ति के अंदर अत्यधिक रुचि रखते थे। परमेश्वर कबीर भगवान अपनी प्यारी आत्मा जो कभी उसके चरणों में रही है, किसी भी युग में, जैसे आप जी जो अब शरण में आए हो, प्रभु की शरण में आ चुके हो, और शेष अभी आने हैं, 64 लाख शिष्य कलयुग के प्रारंभ में, प्रथम चरण में जब परमेश्वर स्वयं आए थे 120 वर्ष तक बनारस में, काशी में एक धानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की लीला करके चले गए। उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के। पुण्यात्मा आज से 650 वर्ष पहले एक महात्मा के, एक संत के 64 लाख शिष्य होना, ये एक अनोखी मिसाल है, अनोखा उदाहरण है, क्योंकि परमात्मा के बिना ऐसे खेल नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा की शक्ति, उस समय न तो कोई परमात्मा की शक्ति का प्रमाण है, उस समय न तो कोई मीडिया था, न कोई टेलीविजन थे, जैसे वर्तमान में किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है तो अरबों खरबों व्यक्ति उसको विचार के उसके विचार सुन सकते हैं। और वर्तमान में तो जागृति लाना एक बहुत आसान है यदि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये तत्व ज्ञान चल पड़े। ये दास जो सत्संग कर रहा है, यदि जिस दिन किसी पुण्यात्मा के भाग उदय होंगे किसी चैनल वाले के और इस ज्ञान को हिम्मत से करके चला देगा, 6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। और जितने ये नकली संत बने फिरे दुनिया को श्रद्धालुओं को भ्रमित किए हुए हैं, इनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसे अब तो किया जा सकता है, लेकिन उस समय न कोई ऐसा जो है प्रचार प्रसार का साधन था। परमात्मा एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हुए और वहां जा जाकर लीला प्रकट की, दुखियों को का दुख दूर किया और निर्धनों को धन दिया, रोगी का रोग कष्ट किया, निसंतान को संतान दी। इस प्रकार वो प्यारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनको मंत्र दिया, केवल प्रथम मंत्र, ये 5 नाम जिसमें होते हैं, ये 7 भी नहीं दिए प्रभु ने। उनकी कमाई के कारण फिर परमात्मा ने एक लीला की थी, एक गणिका को हाथी पर बैठा करके और गंगा जल बोतल में भरकर सीसी में ऐसे और बीच में बैठा करके, आगे रविदास जी को बैठा करके, बीच में उस लड़की को बैठा करके, पीछे परमात्मा विराजमान हो गए थे। उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर हाथी के ऊपर बैठ गए और एक हाथ में वो गंगा जल पी रहे थे। जनता समझने लगी कि ये शराब पी रहे हैं। और उस वैश्या सुप्रसिद्ध वैश्या थी, उस गणका को साथ लिए हुए थे, सभी पहचानते थे कि वो वैश्या है जो आज कबीर के साथ है। तो उस समय जब वो लीला की तो वो 64 लाख वो नकली थे। नकली का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि वो अशिक्षित थे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी जो दास अब ज्ञान प्रचार करा, ये उन्हीं का प्रदान किया हुआ, दास केवल रिपीट कर रहा है। उसमें अशिक्षित होने के कारण जनता परमात्मा को नहीं पहचान सकी क्योंकि सदग्रंथों से वो मेल नहीं कर सके जो भगवान कहा करते थे, इसलिए वो सभी उसमें विमुख हो गए। कुछ तो ऐसे विमुख हो गए कि कोई बुराई नहीं की अपने गुरुदेव की, लेकिन लोगों की शर्म से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ जो गुरुद्रोही हो गए वो तो कभी नहीं आएंगे मालिक के चरणों में, लेकिन अधिकतर केवल परमात्मा के पास जाना छोड़ दिया। और लोग बहकाने लगे कि वो भगवान थोड़ा ही हो सकता, तो उनको ये भी जज की वे गुरु जी ने तकमाल कर दिया और गलती तो बने गई या, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो 64 लाख जो हैं, अब उस परमात्मा की समर्थ उस समय जो भक्ति दी उन्होंने, किसी ने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 15 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष की, तो उसके कारण अब उन्हीं के मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। उस भक्ति में इतनी शक्ति थी दाता ने जो आपसे करवा दी, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसके कारण भी आपके हो सकता है 10-20 मनुष्य जन्म के हो, मनुष्य के जन्म हो सकते हैं। तो अब जो पुण्यात्मा है कहते ही शीघ्र समझ जाते हैं, तुरंत मालिक के शरण ग्रहण कर लेते हैं, ये वही पुण्यात्मा है जो लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। और परमात्मा की चाह भी तड़फ भी है, चाहे वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं और चर्च में, या किसी संत की आड़ में, कहीं ना कहीं वो अवश्य कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है, क्योंकि वो आत्मा रह नहीं सकती भगवान के बिना। और परमात्मा जैसा भी उनको ज्ञान मिला प्रभु के विषय में, वो भोली आत्मा ने स्वीकार कर रखा है और उसी पर दृढ़ हो रही है, लेकिन कोई लाभ विशेष नहीं है। इसलिए कुछ नास्तिकता भी पनप चुकी है वर्तमान में। तो वो पुण्यात्माएं अब 64 लाख तो आवेंगी। अब उनके साथ परमात्मा कैसी रजा बख्श रहा है, किसी को पुस्तक के माध्यम से, किसी से अपनी प्यारी आत्मा जो उपदेश दे चुकी है उसके माध्यम से प्रेरित करके चलो उस आदमी के पास चलते हैं। वो अपना रिश्तेदार है, वो अपना मित्र है, वो अपनी सहेली है, तो वहां जा जाकर अपना संदेश भिजवा रहे हैं किसी बुक के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और किसी को केबल के माध्यम से। अब वो संदेश पहुंच रहा है, वो पुण्यात्मा अब आ रही है, वो तो शीघ्र ग्रहण कर जाती है। तो ऐसे परमात्मा उस पुण्यात्मा के साथ जो श्री नानक जी वाली थी, वो कभी ना कभी किसी युग में प्रभु के चरणों में कंटिन्यूस रही है। तो ऐसे वो परमात्मा उनके साथ लगा रहा है, लेकिन पार नहीं हो पाई। अब वो प्यारी आत्मा जो अम्बरीश वाली फिर राजा जनक बनी, और राजा जनक बनी तब भी जैसे परमात्मा त्रेता युग में आए हैं, जब परमात्मा त्रेता युग में प्रकट हुए थे जैसे अब कलयुग में हुए, ऐसे प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से। जब वो मुनिंदर नाम से आए तो हनुमान जी को, लंका में मंदोदरी को, विभीषण जी को, नल और नील को और शरण में लिया, और ऐसे ही वो चलते फिरते अपनी प्यारी आत्मा जनक जी के पास भी गए। उनको पहले उन्होंने जो भी ज्ञान ग्रहण कर रखा था, अष्टावक्र से भी जो कुछ ज्ञान ग्रहण किया था, तो परमात्मा के ज्ञान को सुनकर उनको फीका लगा, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे मानने को तैयार नहीं हुए। परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। तो परमेश्वर भटक रही है। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तो इन बोली आत्माओं को रो रहा हूं कि तुम मेरी संतान हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये लोक आपका नहीं है, आप काल के जाल में फंस रहे हो, तुम मान जाओ मेरी बात, आ जाओ मेरी शरण में। और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सर्व सुखदायी भगवान, हे पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, हे संकट मोचन, मुझे हमें संकटों से बचा लो, हमारा मुक्ति कर दो। परमात्मा कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तो उस समय तुम्हारी बुद्धि अज्ञानता पर इतनी दृढ़ हो चुकी होती है कि आप मुझे पहचान नहीं पाते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब उसी दृष्टिकोण से नानक जी को परमात्मा पुनः मिले, उनको पांच नाम फिर प्रदान किए, क्योंकि जो पुण्यात्मा होती हैं वो संत का आदर विशेष करती हैं। तो परमात्मा संत रूप में वहां पहुंचे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन मंत्र प्रथम अवश्य ले लिया जनक जी ने, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी। परमात्मा ने वहां से प्रस्थान किया। अब जो मंत्र जाप वो करते थे उसके कारण उनके अंदर बहुत अच्छी भक्ति प्रफुल्लित हो गई, और क्योंकि वो विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, उसमें उन्होंने विशेष जाप, आपको जो ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है वो केवल विष्णु जी वाला ही कर दिया, उन पांचों को भी चारों को छोड़ दिया। और एक उसने जो माया का बीज मंत्र था, जो आपको इस ब्रह्म गायत्री मंत्र में दिया जाता है, इन दोनों का जाप किया। तो ऐसे हम गलती कर जाते हैं, लेकिन उससे लाभ तो हुआ लेकिन मोक्ष विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसे एक चूर्ण बनाया जाता है, उसमें चार पांच आइटम मिलाए जाते हैं, किसी में 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सूंट, 10 ग्राम इलायची छोटी, 10 ग्राम बड़ी, 10 ग्राम किशमिश, इन सबको मिलाकर के एक विशेष औषधि बन जाती है। इसमें से कोई मनुखा मनुखा दाग खाता है, किसमें किस्मत खाता है, इसमें से कोई सूंठ सूंठ खाता है, तो विशेष लाभ नहीं देती, केवल एक ही प्रकार का गुण उसमें होता है। इसी प्रकार ये पूरा मंत्र जो बना रखा है, एक जड़ी है या एक बूटी बना रखी है प्रभु ने। इस पूरे को ही फांकने से बात बनेगी, इस मिश्रण को अलग नहीं करना। ऐसे जनक जी के पास विष्णु जी का ये मंत्र विशेष जाप करता रहा, उसे कुछ उसमें शक्ति सिद्धि आ गई। अपुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है, प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव ऋषि जब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर और पार्वती को जो वो ज्ञान दे रहे थे, उसमें गंदे अंडे में वो था, वो गंदा अंडा तोते का तोता बना और वहां से उड़कर वो भाग लिया। व्यास जी की पत्नी जमाही ले रही थी, ऐसे वहां शरीर तोते का छोड़कर उसके सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से पेट में चला गया। और जब उनका योग हुआ मिलन का, तो उसमें व्यास जी की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया तो सुखदेव गर्भ में बालक रूप में पलने लगा। अब हमने आपको साथ साथ ये सवसम वेद भी सुनाना है, ताकि आपकी आत्मा में दृढ़ता आवे कि सचमुच परमात्मा कबीर जी थे, उन्होंने तो अनमोल ज्ञान दे रखा है। तो फिर क्या होता है, अब सवसम वेद से आपको सुखदेव की उत्पत्ति सुनाता हूं। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भ योनि में बासे, शिव शंकर से करा बना पीऊ या के श्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश लगे भया समागम आन, चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने। आपको फिर एक बार मौखिक सुनाता हूं। के सुखदेव गंदे अंडे के तोते के गंदे अंडे से, उस खोगर से, मैं गंदा अंडा खोगर में रखा था, एक वृक्ष की खोड में, खोगर में यानी सुराख में, तोते वृक्ष की खोगर में, सूखा वृक्ष था। वहां पार्वती जी को, जिसको जहां अमरनाथ का धाम बना है, वहां शिवजी ने पार्वती जी को ये प्रथम मंत्र के बारे में जानकारी दी थी, मंत्र बताया था और अंदर के कमलों के विषय में बताया था। तो वहीं पर ये गंदा अंडा सुन के ऊपर ये वचन चल रहे थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जानकारी थी। पूर्ण परमात्मा ने आकर के शिव जी को शिष्य बनाया था, मंत्र दिया था और उसको यही पांच नाम दिए थे, लेकिन इसने उनमें से केवल एक ही मंत्र रखा। और उधर पार्वती को वो सभी विवरण दे रहे हैं कि मूल कमल में ये है, स्वाद कमर में ये है, इसका ये जाप है, ऐसा वैसे ज्ञान उसको प्रभु की कृपा से था। तो सुखदेव गंदा अंडा जो था वो अंडा स्वस्थ हो गया और तोता बन गया, उसमें से निकलकर तोता बन गया और तोता रूप में हुंकारे भरने लगा। पार्वती समाधिस्थ हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म की वो अभ्यास करती थी, तपस्विनी थी। उधर से वो तो बिल्कुल चुप हो गई, ओंकारे की आवाज आ रही है हम तो शंकर भगवान ने सोचा पार्वती तो समाधिस्थ है, ये मुंह कौन सुने, क्योंकि अपने ज्ञान को दूसरे को नहीं सुनाना चाहते, नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अनधिकारी के पास ये मंत्र पहुंच जावे और वो भक्ति से शक्ति युक्त होकर के किसी को भी हानि पहुंचाने लग सकता है, जैसे किसी निकम्मे के हाथ पिस्टल लग जाओ, ना जाने किसका मर्डर कर दे, तो ऐसे इसको छुपाकर और बचाकर रखा जाता है। चिंतित हुए भगवान के ये तो किसी प्राणी के पास ये मंत्र पहुंच गया और ये शक्ति युक्त हो गया, इसको मार डालूं। तोते को मारने के लिए शंकर जी पीछे पीछे भाग लिए और उधर से वो तोता उड़ के चल पड़ा। व्यास की पत्नी ने जमाई ली, वहां तोते का शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर जो होता है वो चारज हो जाता है, वो लिंग शरीर बन जाता है, तो उसमें पेट में पहुंच गया। और जब पर व्यास की पत्नी गर्भधारण किया तो उस समय वो बालक रूप में पेट में पलने लगा। उधर से शंकर भगवान पहुंचा, उसको पता चला, उसके पीछे पीछे जाकर कहने लगा व्यास की पत्नी को कि तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा कि मैं उसको मारूंगा, क्योंकि उसने मेरा मंत्र सुन लिया है, उस मंत्र के ज्ञान के सुनने से वो अमर हो गया है। व्यास की पत्नी कहने, व्यास जी बैठे थे, व्यास जी कहने लगे, बोले नाथ, हे प्रभु, यदि वो अमर हो चुका है तो उसको मारोगे कैसे? आप ही कह रहे हो तो अमर हो गया, अमर हो गया तो फिर मार कैसे सकते हो? अब शिव जी कहने लगे, भैया अभी बात ठीक है, वापस आ गया। अब 12 वर्ष तक सुखदेव मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता बनी कि भी ऐसे 12 वर्ष तक माताएं बच्चों को गर्भ में रखा करेंगी तो बहुत बुरानमाटी हो जाएगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, ये 9 महीने में तंग हो जाती हैं, ये तो हमारी सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी और बात बिगड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे और व्यास की पत्नी के पास खड़े होकर कहने लगे, तेरे पेट में हमारे ज्ञान का चोर है, उसको बाहर निकाल। अब वह कहने लगी, मैं कैसे निकालूं प्रभुओ, ये तो परमात्मा की कृपा है, मेरे कहने से थोड़ी कोई, ये तो अपने समय पर बाहर आएगा, और मुझे पता ही नहीं कि मेरे गर्भ में कोई बालक है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दुख नहीं। इसलिए जो बालक गर्भ में था उसका गर्भ में ही नाम रख दिया कि उसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, कि उसने मुझे सुख दिया है, पेट में भी दुखी नहीं किया। उधर से एक सुख माने तोता होता है, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसको सुखदेव तोता राम कह रहे हैं, उसका नाम सुखदेव तोता राम दर दिया। सुखदेव का अर्थ तोता और देव माने भगवान, हे तोता राम। अब वो कहने लगे कि सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव कहने लगा कि नहीं आऊं बाहर प्रभु, मैं बाहर नहीं आ सकता, नहीं आऊंगा प्रभु, क्योंकि आपकी त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है, ये जीव की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है बाहर आते ही, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को पूरी जानकारी रहती है, इस माया का त्रिगुण माया का केवल उस गर्भ में असर नहीं होता, ये इस प्रभु की देन है कबीर परमेश्वर की, वहां उसको सब याददाश्त रहती है कि पिछले जन्मों में मैंने बहुत जुल्म किए थे, मैंने भक्ति नहीं की। और बाहर आती है ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण ऑटोमेटिक प्रभाव डालते हैं और जीव को याद ही नहीं रहता तू कौन है। नए सिरे से उसको पढ़ा जाता है, ये तेरा चाचा है, बोल चाचा, कह माता को माता, ये तेरी माँ है या तेरा बहन है, ऐसे फिर कह खह गड़ ये सारे कुछ फिर बार नए सिरे से उसमें फीड किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊं ताकि मुझे कुछ याददाश्त बनी रहे। वैसे ये ज्ञान मैंने सुबह भी सुना दिया था लेकिन अब रिपीट करना इसलिए आवश्यक हो गया कि इसमें नए श्रोता भी आए हैं और जब तक ये नहीं सुन पाएंगे तो आज आगे वाले सत्संग का इनका कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। इसलिए सुना रहा हूं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे रोकेंगे हम, ये तो विधान खंड होता है। सुखदेव बोला कुछ भी खंड हो मैं नहीं आऊं बाहर जब तक तुम अपनी माया नहीं रोकोगे। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई हम इतनी देर माया रोक सकते हैं, जैसे इतनी देर यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। सुखदेव बोला इतनी देर रोक दो कि सुखदेव सुख से उपजा राई सिंह समोए नौ नाथ सिद्ध चौरासी संग उपजे थे दोए। कि इतनी देर, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है गरीबदास साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कि जैसे भैंस का सींग होता है या गाय का सींग खड़ा होता है, उस सींग के ऊपर वो राई रख दे, राई राई होती है सरसों के दाने से भी आधी बल्कि चौथा हिस्सा, उसको वहां रख दे। अर्थात सींग तो ऊपर तो बिल्कुल नुकीला होता गाय का, खड़ा सींग होते हैं, इधर हरियाणा में एग्जाम्पल दिया गया। तो उस सींग के ऊपर यानी राई रखी, रखते ही नीचे गिरे, जितनी देर सींग के ऊपर राई का दाना रुक सकता है इतनी देर रोक देंगे। सुखदेव बोला तुम इतनी देर रोक दो एक बार। उन्होंने कहते इतनी देर माया को रोका, त्रिगुण माया को, इतनी देर में वो बाहर आया। उसको याददाश्त रही है तो बात बिगड़ जाएगी। तो जो ही वो 12 वर्ष की आयु का था और आगे चल पड़ा, उठ के अपनी ओर नाल जो मां की नाभि से कनेक्टेड होता है, जो लंबा जेर जैसा बच्चे की नाभि से लटका हुआ होता है, उस ओर नाल बोलते हैं यहां हरियाणा के अंदर, उस ओर नाल को उठाकर अपने कंधे पर डाल ली और मां बाप की तरफ देखा नहीं, उठते चल पड़ा स्पीड ते। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना चले गए, उनका काम पूरा हुआ। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा बेटा, अरे बेटा बाहर दर्शन तो दे जा पिता, अपने पिता को, तेरी 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होएगा, बेटा होएगा। अब सुखदेव कहने लगा व्यास जी बहुत बड़ा जंजाल है ये, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, तू मेरा बेटा हो लिया। इब कहता पीछा छुटान दे, यदि मैं तेरी तरफ देखूंगा मेरी ममता बन जा मन माने, और फंस गया मैं भी, एक लेवा एक दोवा देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ऐसा कहकर के वो आकाश में उड़ गया, उसमें सिद्धि आ गई थी। अब पूर्व संस्कार से उसके अंदर या बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, ऐसे ऐसी यहां के भगवानों के पास तो 8 सिद्धि हैं। और परमात्मा का जो मंत्र आपको दिया जाता है इसमें आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, आ सकती हैं जैसी जिसकी कमाई होगी, लेकिन इन सिद्धियों को हमने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हम काल के जाल में रह जाएंगे। और ये ऋषि जन इन सिद्धियों के खिलौनों से ही खेलते रहे, इसी में प्रभु पाकते रहे, इसी कारण से ये अपनी दुर्गति करवा कर काल के जाल में ही फंसे रहे। अब आपको अमृतवाणी सुनाते हैं प्रभु की, वो सवसंवेद जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 34 तक कहा है कि कोई तो साधना करता है ऐसे, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई संयम रखता है, कोई जीव हिंसा अहिंसा का ही व्रत रखता है, और सभी अपनी अपनी साधना को कर्म नाशक पाप नाशक ही जानकर करते हैं। लेकिन परमात्मा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि विस्तृत जानकारी तो इनके विषय में परमात्मा के की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में अर्थात उसके द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में सवसंवेद में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, चौथे जाएगी 34वें श्लोक। और उनको दंडवत प्रणाम कर उनको कपट छोड़कर उनसे प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे, फिर जैसे वो कैसे साधना करना तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। ये ज्ञान गीता ज्ञान से अलग है और गीता ज्ञान दाता भी उसे अपरिचित है, इसलिए कहता किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। तो वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई जा रही है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्मा प्यारी आत्मा गरीब दास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसमें अपना ज्ञान फीड कर दिया और वही ज्ञान गरीब दास साहेब जी ने वर्णन किया। सुनिएगा, गंदा अंडा हो गया देह मिटी मल सीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। कहते हैं परमात्मा की महिमा को सुनकर एक समर्थ संत के मुंह तक, क्योंकि तीन लोक के प्रभु समर्थ, तीन लोक के समर्थ यानी सर्व समर्थ नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु वही से, और उनके मुख से जो वाणी बोली जाती है वो बहुत दूर तक असर करती है, यानी आसपास में असर करती है, जीवों कोई भी जीव है उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसलिए शंकर भगवान ने वो स्थान चुना जहां ना चींटी हो सकती, क्योंकि बर्फ और पक्षी होगा तो उसको ऐसी आवाज की कि उन आसपास की वैलियों में घाटियों में इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि सब पक्षी उड़कर भाग गए दूर। केवल गंदा अंडा उसी वृक्ष सूखे वृक्षी खोगर में पड़ा था, वो नहीं उड़ सका जहां पर पार्वती जी को वो ज्ञान सुनाया गया। तो उस शंकर भगवान के मुख से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा जैसी उसने परमेश्वर से ही सुनी थी और उसकी महिमा बता रहे थे, तो कहते उस परमात्मा उस संत के, क्योंकि उसमें वो संत रूप में थे जब पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उसके उस अधिकारी के मुख से जो वचन निकले उस गंदे अंडे पर भी प्रभाव कर गई। वो गंदा अंडा भी ठीक हो गया, उसमें तोता भी बच्चा भी बन गया और वो फिर बोलन लग गया, उड़न भी लग गया और उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर जो जीव का था वो बैटरी चार्ज होगी। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की वाणी जहां जहां भी ये जा रही है आसपास, या चीटी हाथी जो भी आसपास के जीव जंतु या पशु पक्षी घास फूस पेड़ पौधे इन सभी, ये भी सब जीव हैं, इनके ऊपर भी ये असर कर रही है और इनके भी भाग उदय होंगे और इनको भी जब ये शरीर छोड़कर जाएंगे यहां से तो इसका क्रेडिट मिलेगा और हो सकता है इनको मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए एक आध। और उस मानव शरीर में यदि कोई संत नहीं मिला और ये बकवादों में लगे रहे तो फिर काल के गड्ढे में वापस। अब क्या बताते हैं, उड़ा विहंगम रूप धरे ग्रवियों में बास, शिव शंकर शिकरा बना पीऊं या के श्वास। के भगवान शिव उसके पीछे पीछे भाग लिया, जब तोता उड़कर चला पक्षी और वो गर्भ योनि में पहुंच गया व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, तो शंकर भगवान शिकारी की तरह उसके पीछे भाग लिया और कहता मैं इसको मारूंगा इसके सांस पीऊंगा। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लग फिर भया समागम आने, ब्रह्मा विष्णु तीनों कट्ठे हो गए महेश, चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने, व्यास व्यास की स्त्री ही कर बंधन आधीन, तिहू देवा दर्शन भये भाग बड़े लोलीन, बोले व्यास उदास होए कैसा चोर दयाल, कित से आया कौन है मोसे कहो हवाल। अब व्यास और व्यास की पत्नी वहां बैठे थे, ये तीनों आके कहने लगे कि हमारा चोर तेरे उदर में है, अब व्यास और व्यास की पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे तीनों देवताओं के आज दर्शन हो गया, आज बड़े हमारे बड़े भाग हैं। लेकिन हे प्रभु, कौन कैसा चोर और कितना आया, कहां से आया, हमसे कृपा बताइए। शिव बोले बाणी कहे, बाखों विधि संयोगे, दई चरित्र देवार चे सुरत नृत्य संजोग, जन्म योनि नहीं तासिक दे ग्रह नादे, ब्रह्म तत् हमरा सुन्या ताते बाद विवाद। शिव जी कहता कि इसने हमारा ब्रह्म ज्ञान सुन दिया, इसलिए हमारा यो वाद विवाद झगड़ा है। कहे व्यास की स्त्री सुन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पुत्र सुख देव है, सुनियो बचन संदेश। बोलत सुखदेव गर्भ में सुनियो तीनों देव, अलख लख चौरासी में पड़े भिन भिन भाखों भेवे। अब सुखदेव गर्भ माँ के पेट से बोलता है, बोलत सुखदेव गर्भ से है, सुनियो तीनों देव, लख चौरासी में पड़े भिन भिन भाखू भेव। मां के पेट से सुखदेव बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब नारी नारी अपनी वर्ण बताता हूं कि मैं ना जाने कितनी बार दुख पाया, कितनी बार मैंने कष्ट उठाए, अब के ये संकट मोल नहीं लूंगा। कीट पतंग भवंग हवे योनि धरी कई बार, अंत कोट जुग हो गए जामन मरण हमारे। व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव कह रहा है, कीट पतंग और भवंग यानी कितनी बार सांप बने और ना बने, कितनी बार अन्य योनिया धारण की, अनंत कोट युग हो गए जन्म मरण हमारे। क्योंकि माँ के पेट में तो पूरा रोशनी होती है, पिछले जन्म ऐसे जुलम हुए मेरे संग में, हे भगवान इब कैस गंध से माँ के गर्भ से निकाल दे, इस कैद से आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाहर आते ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि ये सब कुछ भूल जाता है। द्वादश वर्ष पुगाए करे बाहर आए देव, ओल नाल कमर कसी चले पंथ सुखदेव। व्यास कहे सुखदेव से कहां चले चित भंग, बोले बालक ब्रह्म गति एता ही सत्संग। अब व्यास जी कहते हैं सुखदेव से, कहते हैं कि कहां चले चित भंग, कहते बुद्धि भ्रष्ट कहां भाग रहा तू मेरा बेटा होकर के। अब वो बालक कहता है कि बस भाई इतना है सत्संग, तेरा मेरा इतना ही मेल था, अब मैं इस उलझन में उलझू को ना। व्यास कहे सुखदेव से कहां चले चित भंग, बोले बालक ब्रह्म गति ही एता ही सत्संग। तेरा मेरा बस इतना ही मेल था, सत्संग माने इतना ही संग था, अब आगे का कोनी। कोट कल्प जुग जन्म की समझ पड़ी है मोए, कहते पिछले कोट जन्मों की कल्पों की, कितने कल्पों की मुझे सारा ज्ञान हो गया, और कौन पिता को पुत्र है कै समझाऊं तोए, कौन किसका बेटर कौन किसका बाप, अब के समझाऊं तेरे ते। ग्रीपांस तत्व तत मिले उड़े भी हंगम रूप, हंकारा तभी बरा बोले सत स्वरूप। गगन मंडल को उड़ गए बैकुंठों की आवास, तीन लोक वितरित फेरे जीव शब्द निवास। ऐसा जीव जिहाने में मट्टी मैल संजूत, शंकर से सतगुरु मिले पद पावे अनुभूत। गर्भ मरण पर मारे है गर्वमणि पर मारे है, जे सुख देसा होए जनक किए गुरु आन कर, छूटे सकल दरोए। न्यारे न्यारे कर्म है ये न्यारी न्यारी जात, कोई काहू का है नहीं झूठा संगी साथ। अब यहां जाति का अर्थ अपनी जाति से नहीं, जीव की जाति से, नारी नारी जात, जैसे मनुष्य जाति, फिर पशु जाति के, फिर पक्षी जाति के। ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भरात, गृहदारा और स्त्री आप को जाते कहते हैं। ऋण संबंधी परमात्मा समझा रहे हैं कि उन दोनों को पात्र बना के कबीर जी हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऋण संबंधी जुड़े हैं मादर पितर, माता पिता और भ्रात भाई, और गृह द्वारा और स्त्री, फिर आप कुंजात अपने जहां। अब मृत्यु होती जाएगी, अगले संस्कार वश ना जाने पिता कहां जन्म लेगा, मां की तलेगी, बहन कहीं जाएगी, भाई कहीं जन्मेगा, कोई किसी योनि में कर्मानुसार, कोई किसी योनि में। तो यहां कहते हैं ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जात। सतगुर संगी संत हैं पार ब्रह्म की सेव, सार नाम सर जीवन जड़ी ही पास रहे दिल देव। दम सुदम को सो दे ले ओहम सोहम सार, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदार। परले पार दम सुदम को सो दे कर जपिए जपा जाप, प्राण पिया ना करेगा अनन बीच गरगाप। दम सुदम को सो दे कर जपिए अजपा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अब जिनको सतनाम प्राप्त है वो इस वाणी को समझेंगे कि दम सुदम श्वास और श्वास को सोध ले, अर्थात इस मंत्र का, श्वास वाले मंत्र का सतनाम, जो श्वास उश्वास से जाप कर किया जाता है, जो दो मंत्र का है, इसको सोध ले, अर्थात इसका जबरदस्त अभ्यास कर ले। और ये जप ये अजपा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अनल वानेस वायु, श्वास के द्वारा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और फिर आप इस वजन से गर्गाप हो जाओगे, यानी परिपूर्ण हो जाओगे। बहुर विहंगम उड़त है तेर कुठी छाजे तेज, प्राण पुरुष परचा भया लख पार ब्रह्म की सेज। इला पिंगला घाटी दो सुष्मण सिंध समाए, चार मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। कहते हैं चार मुक्ति, जिनको यहाँ की चौथी चार मुक्तियों जो अंतिम मुक्ति मानते हैं, इस साधना से वो चार मुक्ति तो वहां पानी भरे। चार मुक्ति पानी भरे। इला पिंगला घाटी दो सुषुम्ना सिंध समाए, चार मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। यानी जो परमात्मा साधना बताएंगे आपको, सतनाम वाली जो आप, ये दास आपको देगा वो मंत्र, उस श्वास से जपा जाप जपने से फिर आपकी ये इला पिंगला अपने आप कार्य करना शुरू कर देंगी और सुषुम्ना खुलकर त्रिकुटी पहुंच जाएंगे, सब कमलों के को खोलते हुए। और कहते हैं फिर वो परमात्मा वहां से आपको अपने हिसाब से ले जाएगा दसवां द्वार। अभी हमने दसवां द्वार सुना है नहीं, वो तो बारहवें द्वार के को पार करके परमात्मा की प्राप्ति है। तो यहां कहते हैं चार मुक्ति इला पिंगला घाटी दो सुषुम्न सिंध समाए, चार मुक्ति पानी भर है जो उस द्वारे जाए, उस रस्ते से जो जाएगा द्वार से। ब्रह्मरंद्र का घाट है तिल परवान प्रेख, नैनो माही रम रहा ये सुर में कैसी रेख। पुण्यात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के तत्वज्ञान और भक्ति विधि से अपरिचित थे, इसलिए हमें ज्ञान नहीं था। और अब क्या बताया कि नैनो अंदर रम रहा वो सुरमे कैसी रेख, सुरमा जैसे काजल डालते हैं, ऐसा एक काला काला सा। जब आप भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये नाम आपको दिया जाएगा, आप सिमरन शुरू करोगे, कुछ दिन में, छह महीने में, एक वर्ष में, दो वर्ष में, आपकी आंखों के सामने एक ऐसा तार सा कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के काले काले से ऐसे नजर आने लग जाएंगे, इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे ऐसा लगा जैसे कई बार तो मक्खी आ गई, और ध्यान से देखेंगे तो मक्खी नहीं, यानी ज्यादा परिपक्व होने के बाद बहुत कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी भक्ति की कमाई का शीश, आपके भक्ति का प्रतिफल प्रतिबिंब दिखेगा, वो भगवान नहीं है। एक कुछ ऐसे पंथ हैं जो नकली यही दिखाते हैं कि त्राटक ध्यान कर, लेट जा, किसी को मत देख, आंखों में पानी पड़ता रहेगा, कुछ टाइम आपको क्या देखेगा कि देख सामने क्या दिखाई दिया, कि सामने देखा तो वो देखो पूर्व जन्म की पिछले जन्मों की भी भक्ति से दिखाई देती है। इस दास को बचपन से ही ये आंखों के सामने एक ऐसा तार सा और काली काली टिक्की थोड़ी सी दिखती थी, एक या दो तीन वो दिखाई देती थी। तो मैं सोचता था या कि मेरी आंखें कमजोर हैं इसलिए मुझे दृष्टि दोष है, इस कारण से दिख है। फिर जब उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद ये तो निर्दिखने लगी, मैंने सोचा ये कति फूट गई आंख तेरी, तय चश्मे भी लुवा लिए, चश्मे आग में कभी दिखे, वो तेरा गजब हो। बस में बैठ जाता, बस के शीशे में देखा, बस के शीशे में परली साइड में दिखे। तो गुरुदेव से कहा, प्रभु मेरी आंखें बहुत खराब होगी और ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बड़े ऐसे गुरुदेव ने बोला, रहा तेरी कमाई है, कदे कित डॉक्टर के चक्कर में फंस जा तो। वो तेरा गजब हो, हमने जो ही नहीं पता था, हम अनजान इतने थे। ऐसे फिर एक हमारा सेवक बना था, वो बाद में सेवक बना, उसके साथ यही बनी, वो कितने पिछले जन्म का संस्कारी था, उसको ये वो दिख ऐसी दिखाई दिया करती, वो डर गया कि वो भूत प्रेत सेक में। उसने पहले तो डॉक्टरों से चेक कराई, डॉक्टर बोले भाई तेरा हमने जो करना था कर लिया, इसका ऑपरेशन होगा तेरा जब देखेंगे के बेहोश है। फिर वो डर गया कि ये भूत प्रेत है, तो इतना डरा हुआ घर तो बार बिना लेकर नौकरी भी छोड़ दी। हमारे एक भक्त ने बताया कि भी आप नाम हमारे गुरुजी से नाम लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने नाम लिया, नाम लेने के बाद उसकी जो भैंसा मालिक की कृपा से निकल गया। मैं बोला तेरे बीमारी के है, बोला मन में न भूत दिखे, मैं कैसा दिखे कि आंखें आगे ऐसे ऐसे घूमे तार सा दिखे, रफूटे बागान, ये तो तेरी पिछले जन्म की कमाई है लेकिन आगे की अब बनानी पड़ेगी, नीति घटती चली जाएगी। उसके वाय बीमारी पा करी थी, मैं तो मर गया, मेरे ग्रह के दिखे यू, अब नू कम देखू को ना नू कर लू तेरा गजब। तो हम ऐसे बिना ज्ञान के हम अपने जो ना ऐसा काम बिगाड़ देते। ऐसे मेरे पास भी बहुत से भगत आए, बोले जी मैं तो कति कम दिखन लग गया, मैं क्या हो गया, बोला तार से जाला है दिखे, मैं जाला सा किसा भी, बोला तार से दिखे। डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा, डॉक्टर ने के बेरा वो के चीज से ऑपरेशन कर लेंगे तो भी वह नौकरी नो रहेगी, बात फिर कुछ और बीमारी बता देंगे, ऑल इंडिया भेज देंगे। तो पुण्यात्मा ये सत्संग आप पूरे सुनोगे ना सारे, जब जाके सारा कोर्स पूरा होगा। ये जैसे आज मैंने सत्संग में यह बता दी और फिर मन माना छह महीने में नंबर आओ इस बात का, इस चर्चा का, तो बीच में जो नहीं सुन सके वो तो इसे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए से प्रार्थना है कि या तो सीडी ले लो, सीडी हम 10 रुपए में दे रहे हैं आपको, यानी अगर आप सेट लोगे तो 10 रुपए में, एक एक लोगे तो 15 रुपए में, एक्चुअल कॉस्ट से भी कम लेते हैं। और ये सीडी आपको 30 रुपए से कम कोई देगा नहीं, किसी सत्संग में जाकर देख लेना। ये दास का उद्देश्य है कि कम से कम रेट में आम जनसाधारण भी को खरीद के घर बैठ के, आजकल टीवी और ना तो मोबाइल में फिट हो जाए आप वाले और खूब देखे, टाइम मिलते बस में सफर कर रहा हो, बस में चालू कर लिया अपने और सुनता जा, देखता जा, काना गला ले वो सुन का और आगे फिल्म चला ले, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि पूरा कोर साफ करो, फिर देखना क्या होता है। तो वही परमात्मा संकेत कर रहे हैं, ब्रह्मरंदर का घाट है तिल परवान परेख, नैनो माही रब रही व सुरमे के सीरेख। काजल, सुरमा कहते हैं काजल। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर, ब्रह्मा शिव ध्यान धरे, विष्णु करे प्रणाम, सतगुर बिन पावे नहीं कबीर पुरुष का दाम। सारिंग सुरत लगाई ले, पारिंग पिंडर प्राण, गरीब दास पावे सही परम पद निर्वाण। अब वो सुखदेव जो था, सुखदेव ऋषि, अब देखो पुण्यात्माओं, जब वो माँ के पेट में था तो उसको पूर्ण यूं कह था कि इबके मैं चुकू को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहा कि प्रभु पिछले जन्मों में करोड़ों असंख्यों करोड़ों जन्मों में बहुत बड़े बहुत ज्यादा दुख उठा लिए मैंने, और अब मुश्किल से दाव लगा है, अब मैं चुकू नहीं। गर्भी त्याग दिया और वह सिद्धि आकाश में उड़न की उसके कुछ पिछले संस्कार से, और उधर से वो भगवान शिव की वाणी पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनने से वो बैटरी चार्ज होगी थोड़े समय थोड़ी सी, तो उससे मांडी पाक गया। और वो क्या करे, आकाश में उड़ जावे, स्वर्ग लोक में पहुंच जावे। यहां पर एक स्वर्ग कोमन स्वर्ग है जहां का इंद्र शासक है, उसको देवराज कहते हैं, वो उसका स्वर्ग लोक, उसी के साथ में पितर लोक, उसी के साथ में नरक लोक, ये कंबाइंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस सब का जो उस स्वर्ग का मालिक जो है देवराज इंद्र है, और नरक का मालिक यमराज है, और वो भी इंद्र के अधीन ही होता है। उधर से पितर लोक भी है, वो भी इंद्र के अधीन और यम उसका असिस्टेंट, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये मंत्री हैं। अब जैसे यमराज तो समझो जेलर है, और मंत्री जैसे होम मंत्री है, वो सबके ऊपर इन जेलर जालरा पर सब जेलों पर सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और फिर उनका एक विभाग का कंट्रोलर होता है, ऐसे समझे। तो स्वर्ग में ये चला जाता था आकाश से अपने ऐसे उड़कर सिद्धि से, तो वहां के देवता लोग उसका बहुत आदर करते थे कि बड़ा महापुरुष है और यहां तक पहुंच जाता है, बड़ा सत्कार करते थे, उसको आदर देते थे, विचार सुनते और सुनाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं विष्णु लोक में चलता हूं, विष्णु लोक में पहुंच गया। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, परमेश्वर जी, गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर यानी जो गर्भ में ही वो सिद्ध बन गया था, योगी बन गया था, और इसी बात बना हुआ था सुखदेव।